आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जिसका मकसद इन मुल्कों के साथ दो तरफा और कसीर मुल्की ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। वो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत शिमाल मशरकी खित्ते में पायदार अमन लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने के हादसे में 10 नौजायदा बच्चे हलाक हो गए। एनसीबी ने दिल्ली में 900 करोड़ रुपए मालियत की कोकेन जब्त की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नशीली अशिया फरोख्त करने वाले ग्रुपों को पकड़ने का काम अंधक तरीके से जारी रहेगा। और क्रिकेट में जोहान्सबर्ग में चौथे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 135 रन से हराकर 4 मैचों की सीरीज 3-1 से जीत ली है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबो की दावत पर नाइजीरिया का दौरा करेंगे। पिछले 17 साल में भारत के किसी वज़ीर-ए-आज़म का नाइजीरिया का यह पहला दौरा होगा। इस मुल्क के अपने 2 रोज़ा क्याम में वज़ीर-ए-आज़म दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकतदारी का जायजा लेने के लिए आला तरीन रहनुमाओं से बातचीत करेंगे और दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे के मजीद मौकों पर तबादला ख्याल करेंगे। वो नाइजीरिया में भारतीय बिरादरी के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। भारत और नाइजीरिया के दरमियान 2007 से दिफाई ताल्लुकात हैं, जिसमें मईशत, तवानाई और दिफा के शोबों में शराकतदारी में इजाफा हो रहा है। 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में अहम शोबों में $27 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की है। दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत तरक्याती ताउन भी कार फरमा है। पेश है एक रिपोर्ट।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद 18 नवंबर को ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो जाएंगे। वो G20 सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसकी मेज़बानी सदर लूला डी सिल्वा करेंगे। भारत G20 त्रोइका का हिस्सा है और वो G20 की जारी सरबरा कॉन्फ्रेंस के मुज़ाकरात में सरगर्म तआवुन दे रहा है। इसी दौरान वज़ीर आज़म मोदी मुख्तलिफ आलमी मामलात पर भारत का मौकिफ पेश करेंगे और G20 नई दिल्ली के रहनुमाओं के एलामिये के नताइज, आलमी जुनूब से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंसों की आवाज़ के बारे में अपनी राय का इजहार करेंगे। इन कॉन्फ्रेंसों की मेज़बानी हालिया दिनों में भारत ने की थी। उम्मीद है कि जनाब मोदी G20 समिट से अलग बहुत से रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत 19 से 21 नवंबर तक गयाना के दौरे पर रहेंगे। गयाना का यह दौरा 1968 से अब तक का किसी भारतीय वजीर आजम का यह पहला दौरा होगा। पिछले साल गयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मेहमान खसूसी के तौर पर भारत का दौरा किया था। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया था। वजीर आजम मोदी अपने दौरे में सदर अली के साथ तबादले ख्याल करेंगे और गयाना के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, गयाना की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और वहां आबाद भारतीय बिरादरी के इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। गयाना के जॉर्ज टाउन में वजीर आजम दूसरी कैरीकॉम भारत सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद खित्ते के साथ भारत के देरीना ताल्लुकात में इजाफा करना है। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आसाम में बोडोलैंड में 2020 के अमन माहदे के बाद तरक्की की एक नई लहर आई है। कल शाम नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2020 के बोडो अमन समझौते से न सिर्फ बोडो बरादरी को फायदा हुआ है, बल्कि बहुत से दीगर अमन माहदों के लिए भी राह हमवार हो गई है। उन्होंने कहा कि अमन माहदों की वजह से 10,000 से ज्यादा नौजवान सिर्फ आसाम में हथियार और तशद्दुद का रास्ता तर्क करके असल धारे में शामिल हुए हैं।
मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। बोडो शांति समझौते अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा और उसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है दोस्तों।
वजीर आजम ने कहा कि वो बोडोलैंड में तरक्की के असरात से मुतमईन है, जहां तकरीबन 50 साल से तशद्दुद और खून खराबे का सिलसिला जारी था। उन्होंने नक्सली सरगर्मियों में शामिल लोगों से कहा कि वो बोडो अवाम से कुछ सबक हासिल करें।
नक्सलवाद के रास्ते पर जो नौजवान है, मैं उनको कहता हूँ कि मेरे बोडो साथियों से कुछ सीखिए। बंदूक को छोड़िए, बम बंदूक पिस्तौल का रास्ता कभी भी परिणाम नहीं लाता है, परिणाम बोडो ने जो दिखाया है ना, वो ही रास्ता लाता है।
उन्होंने कहा कि हुकूमत शिमाल मशरकी रियासतों के माबैन सरहदी तनाज़ात का कोई काबिल कबूल हल निकाल कर शिमाल मशरक में मुस्तकिल अमन के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। नौजवानों और ख्वातीन की तरक्की के लिए हुनरमंदी के फरोग और मौकों की दस्तयाबी की अहमियत पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने इस इब्तदाई मिशन के बारे में इजहार ख्याल किया, जो हुनरमंद बनाए जाने, कारोबार शुरू किए जाने, रोजगार और तरक्की पर मबनी है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि इससे बोडो नौजवानों को बड़े पैमाने पर फायदा हासिल हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में बीजेपी कारकुनों से बातचीत करेंगे और माजा बूथ सरावत मजबूत प्रोग्राम से आज खिताब करेंगे। इसके अलावा कई बीजेपी रहनुमा और इनके इत्तेहादी रियासत भर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी रहनुमा नितिन गडकरी महाराष्ट्र में होने वाले वाहिद मरहले के इंतखाब के लिए आज शोलापुर, पुणे और सांगली में इंतखाबी जलसे करेंगे। वहीं नायब वजीर आला और बीजेपी रहनुमा देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली, चंद्रपुर, मुंबई और पुणे में तशहीरी मुहिम चलाएंगे। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी 2 जबकि प्रियंका गांधी 3 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। एनसीपी सरबरा अजीत पवार सोलापुर, पुणे और नासिक में इंतखाबी मुहिम अंजाम देंगे। दूसरी जानब एनसीपी शरद पवार के सरबरा शरद पवार सातारा और रायगढ़ में इंतखाबी जलसे करेंगे। वहीं एनसीपी शरद पवार की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले पुणे में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। शिवसेना अधूबाला साहब ठाकरे के सरबरा उद्धव ठाकरे मुंबई और थाने में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। महाराष्ट्र के 288 असेंबली हलकों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपने उम्मीदवारों के हक में हिमायत हासिल करने के लिए एनडीए और आईएनडीआईए इत्तेहाद दोनों के कद्दावर रहनुमा रियासत भर का दौरा कर रहे हैं। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी रहनुमा अमित शाह आज दुमका, देवघर और धनवाड़ में 3 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। दूसरी जानब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी जामताड़ा और खिजड़ी में अवामी जलसे करेंगे। वजीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के सीनियर रहनुमा हेमंत सोरेन का भी रियासत में 6 इंतखाबी जलसों से खिताब का प्रोग्राम है। वहीं आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव भी आज गोड्डा में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वोटों की गिनती झारखंड में दूसरे और आखिरी मरहले के तहत 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इंतखाबी हलकों की तफसीलात से मुतालिक अपनी सीरीज में आज हम झारखंड के बोकारो जिले में चंदन क्यारी असेंबली सीट की बात कर रहे हैं। यहां असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
चंदन क्यारी सीट दर्ज फहरिस्त जातों के लिए रिजर्व है। अपोजिशन लीडर अमर कुमार बाउरी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जनाब बाउरी ने चंदन क्यारी से 2 बार 2014 और 2019 में चुनाव जीता था और अब वो तीसरी मुद्दत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उमाकांत रजक को मैदान में उतारा है, जो पहले AJSU पार्टी में थे। NDA के साथ सीटों के बंटवारे के तहत ये सीट बीजेपी के पास गई है। AJSU ने उमाकांत रजक को टिकट देने से इनकार कर दिया था, लिहाजा उन्होंने JMM की रुकनियत इख्तियार कर ली थी। अगरचे इस सीट से 3 आजाद उम्मीदवारों समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला बीजेपी के अमर कुमार बाउरी और JMM के उमाकांत रजक के दरमियान है। इस हलके में पीने के पानी की किल्लत, नाकाफी बिजली की सप्लाई और नकले मकानी समेत कई अहम मामला दरपेश हैं। रांची से KK लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवमौलूद बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वाली यूनिट NICU में कल रात आग लग जाने के वाकये में कम से कम 10 बच्चों की मौत हो गई और 16 बच्चे जख्मी हो गए। कानपुर जोन के ADG आलोक सिंह ने राहत कामों की निगरानी की और तस्दीक की है कि आग भड़कने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है। ADG के मुताबिक NICU वार्ड में 47 बच्चे भर्ती थे और कई फंसे हुए बच्चों को बचाया गया है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने झांसी में मेडिकल कॉलेज کا دورہ کیا. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پاٹھک نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا.
گھٹنا کی اچ استری جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں, ساتھ ساتھ مجسٹریٹی جانچ ہوگی. 24 گھنٹے کے اندر استھانی پرشاسن سے پراتھمک جانچ رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا ہے. 10 بچوں کی درباگیپورن مرتیو ہوئی ہے, 7 بچوں کا شناخت ہو چکی ہے اور ہماری سرکار پوری پیڑت بچوں کے ساتھ ہے, ان کے پریوار کے ساتھ ہے اس دکھ کی گھڑی میں.
اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور ضلع انتظامیہ کو راحت کاموں کو جنگی پیمانے پر انجام دینے کی ہدایت دی ہے. وزیر اعلی نے جھانسی ڈویژنل کمشنر اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس سے 12 گھنٹے کے اندر واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے. نشیلی اشیاء پر کنٹرول پانے سے متعلق بیورو این سی بی نے دلی میں ایک بڑی کارروائی کے تحت تقریباً 900 کروڑ روپے مالیت کی کوکین کی اب تک کی سب سے بڑی کھیپ کا پتہ لگایا ہے. وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابھی تک جو تفتیش کی گئی ہے اس سے انکشاف ہوا ہے کہ بیرون ملک قائم ایک گروپ اس کام کو انجام دے رہا ہے. وزارت نے بتایا کہ ضبط کی گئی کوکین کی کچھ مقدار کوریئر یا چھوٹی کارگو خدمات کے ذریعے آسٹریلیا بھیجی جانی تھی. اس سلسلے میں اس گروپ کے 2 اہم ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ضبط شدہ کوکین کے وسیلے کا پتہ لگانے اور اس گروپ کے رابطوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. آج پورے ملک میں پریس کا قومی دن منایا جا رہا ہے. اس دن سماج میں ایک آزادانہ اور ذمہ دارانہ پریس کے لازمی رول کی عزت افزائی کے لیے منایا جاتا ہے. 1966 میں آج ہی کے دن پریس کونسل آف انڈیا نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پریس کا اعلی معیار برقرار رہے اور وہ کسی بھی طرح کے بے جا دباؤ میں نہ آئے ایک اخلاقی نگراں کے طور پر اپنا کام شروع کیا تھا. اس دن نہ صرف پریس کی حصولیابیوں کا جشن منایا جاتا ہے بلکہ ایک زیادہ باخبر اور شفاف سماج کی تعمیر کے تئیں اس کی ذمہ داری کا احساس بھی پیدا کیا جاتا ہے. اس دن کے اعتراف میں مختلف سرگرمیاں جیسے صحافت میں عمدہ کارکردگی کے لیے قومی ایوارڈ اور سووینر کا اجرا جیسے پروگرام شامل ہیں. اس سال کا موضوع ہے پریس کی بدلتی ہوئی نوعیت. سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے مرکزی وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے کل نئی دلی میں بھارت منڈپم میں انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر IITF میں وزارت کے پویلین کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈاکٹر کمار نے کہا کہ وزارت 100 سے زیادہ پسماندہ کاریگروں اور کاروباریوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے کہ وہ اس میلے میں اپنے کام کی نمائش کریں. اس کا مقصد ان کے معاشی حالات کو بہتر بنانا ہے. کل شام اتر پردیش میں دیو دیپاولی تقریبات کے موقع پر 17 لاکھ سے زیادہ مٹی کے دیے روشن کرنے کے ساتھ ہی وارانسی گنگا گھاٹ کی جگمگاہٹ قابل دید تھی. بھگوان شیو کا شہر اور مندروں کے شہر کاشی کو بھی 4 لاکھ مزید دیے روشن کر کے سجایا گیا. پٹیل اور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے پہلا دیا روشن کر کے ہوئی. اس کے بعد آتش بازی کی گئی. دلی اور قومی راجدھانی خطے میں آج صبح 7 بجے ہوا کے معیار کا اشاریہ سنگین زمرے میں پہنچ گیا اور یہ 404 درج کیا گیا. اور کرکٹ میں بھارت نے کل جوہانسبرگ کے وانڈررز اسٹیڈیم میں کھیلے گئے چوتھے اور آخری T20 بین الاقوامی میچ میں جنوبی افریقہ کو 135 رن سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے یہ سیریز 3-1 سے جیت لی ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی.
شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے مختلف اردو اخبارات میں الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا گیا ہے. روزنامہ انقلاب اور راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی قبائلیوں کی ترقی کے تئیں وزیر اعظم کے اقدامات پر مبنی ہے. قبائلیوں کی ترقی پر 80,000 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. جھارکھنڈ اور مہاراشٹر کے ووٹروں کو وزیر اعظم کا پیغام. جناب مودی نے بہار سے 6,640 کروڑ روپے کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا. صدر جمہوریہ نائب صدر لوک سبھا اسپیکر نے بھگوان برسا منڈا کے 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر گلہ عقیدت پیش کیے. ہندوستان ایکسپریس کی اہم سرخی ہے مکانات اور شہری امور کی وزارت نے صحت مند اور جامع شہری کاری کے لیے طویل مدتی شراکت داری کو مضبوط بنانے کی غرض سے اقوام متحدہ کے ہیبیٹیٹ پروگرام سے متعلق مفاہمات ناموں پر دستخط کیے.
اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج نائجیریا، برازیل اور گیانا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جس کا مقصد ان ملکوں کے ساتھ 2 طرفہ اور کثیر ملکی تعلقات کو مستحکم کرنا ہے. وہ برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں G20 سمٹ میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت شمال مشرقی خطے میں پائیدار امن لانے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے. جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم زوروں پر ہے. اتر پردیش کے شہر جھانسی میں مہارانی لکشمی بائی میڈیکل کالج میں آگ لگنے کے حادثے میں 10 نوزائیدہ بچے ہلاک ہو گئے اور این سی بی نے دلی میں 900 کروڑ روپے مالیت کی کوکین ضبط کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔